Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajata Giri Nibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणेर व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः शांति शांति
ओम 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 कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के छठे अध्याय में चौथा श्लोक
आरंभ कर्माणि गुणान्वितानि वावांश्च सर्वान् विनियोजयद् यः तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति सत्तत्त्वन्यः आदिशसंयोगनिमित्तहेतुः परत्रिकालः अकलोऽपि दृष्टः तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं सुचित्तस्तमुपास्य पूर्वं सवृक्षकालाकृतिभिः पर्वण्यो यस्मात् प्रपञ्च परिवर्तते अयम् धर्मावहं पापनुदं भगेशम् ज्ञात्वात्मस्थम् अमृतम् विश्वधामः तमीश्वराणाम् परमम् महेश्वरम् तम् देवतानाम् परमम् च दैवतम् पतिम् पतीनाम् परमम् परस्ताद् विदामदेवम् भुवने समेड्यम् परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हम जिस लक्ष्य में चल रहे हैं, जिस मार्ग में चल रहे हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग में चल रहे हैं, उस मार्ग से कैसे चला जाए और उस मार्ग से चलकर अपने लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साध्य साधन का निरूपण हो रहा है। पहले तो ये बताया कि आरभ्य कर्माणि, कर्म किए बिना फल तो किसी को भी मिलता नहीं है। इसलिए कर्म का आरंभ मात्र मनुष्य के लिए शास्त्र विधान है। अन्य किसी के लिए भी शास्त्र के द्वारा कर्म का विधान नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए कर्म का विधान है। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। भगवान ने गीता में कृष्ण को कहा है, हे अर्जुन तुम भी कर्म करो, पूर्वे पूर्वतरम, तुम्हारे पूर्वजों ने पहले जिस तरह कर्म किया था तुम भी उसी तरह कर्म करो। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। इसी बात को यहां कहा कि आरंभ कर्माणि, कर्म कौन से करना चाहिए ये बात शास्त्र ने ही निर्धारण की हुई है। अपने बुद्धि से ये मेरा कर्म है, मुझे ये करना है, ये करके कर्म नहीं करना। इसलिए तो गीता में इस बात को संकेत किया कृष्ण ने, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थिति, तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है ये बात किसी मनुष्य के कह देने मात्र से वो कर्तव्य नहीं मान लेना, और किसी मनुष्य से कह देने मात्र से ये अकर्तव्य है ये भी नहीं मानना। शास्त्र के आधार पर मनुष्य ने कहा है तो वह ठीक है, शास्त्र के विपरीत मनुष्य कोई कहता है तो वह मनुष्य के कहने पर भी वह ठीक नहीं है। इसलिए तो शास्त्र में कहा है यदि अपना ही गुरु जिसको तुम गुरु मानते हो वह भी कई बार किसी कारणवश पक्षपात करके किसी प्रयोजन और किसी कारण से प्रेरित होकर वह भी तुम ये कर्म करो कहता है तो आंख बंद करके नहीं कर देना। गुरु ने कहा इसलिए मैं ये कर्म ठीक है मुझे करना है, ये बात अलग है कि गुरु कहेगा तो गुरु के कहा हुआ कर्म को तो करना ही चाहिए। लेकिन कई बार शास्त्र विपरीत किसी कारण से कह देता है तो फिर उसको अपनी बुद्धि से विचार करो कि गुरु का कहा हुआ ये कर्म शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, ये भी तुम्हें विचार करना बहुत जरूरी है। और यही आज की कमी है, क्योंकि हम खुद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं तब फिर ये कह देते हैं कि गुरु जो कह रहा है ठीक कह रहा होगा, क्योंकि वो शास्त्र अध्ययन करता है। आप लोगों ने भागवत का प्रसंग सुना ही है, शुक्राचार्य का प्रसंग, बलि ने शायद कर्म की हो, मैंने शास्त्र पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो, पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हम पता नहीं, लेकिन शुक्राचार्य तो बड़े शास्त्रज्ञ थे। शास्त्रज्ञ होते हुए भी जब उन्हीं शुक्राचार्य जी के अध्यक्षता में बलि यज्ञ कर रहे थे तो भगवान चले गए, बावन के रूप धारण करके ब्राह्मण बटुक बनकर चले गए, क्योंकि यज्ञ के नियम है कि यज्ञ में दीक्षा लेकर बैठने पर कोई ब्राह्मण आदि यति आदि याचना करने आते हैं तो उनको देना चाहिए, कुछ न कुछ देना चाहिए, यज्ञ का प्रयोजन ही यही है। यज्ञ का तीन अर्थ बताया गया है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ हो और उसमें दान न हो वो यज्ञ अधूरा है, अपूर्ण है, वो अदृष्ट पैदा करने में समर्थ नहीं करेगा, नहीं रहेगा। यज्ञ हो और सत्संग न हो वो भी यज्ञ अदृष्ट पूरा करने में समर्थन नहीं होगा। और यज्ञ हो और उस यज्ञ के प्रधान प्रधान देवताओं की पूजा न हो वो भी यज्ञ अदृष्ट पैदा करने में समर्थन नहीं होगा। तो यज्ञ के पूर्ण करने के लिए दान की आवश्यकता है, सुना कि बलि यज्ञ करने बैठा हुआ है तो उसकी पूर्णता के लिए दान की आवश्यकता है, हम चले जाएं और कुछ मांग ले तो दान देगा ताकि उसका यज्ञ सफल हो जाए, उस उद्देश्य से भगवान गए थे। इस बात को लेकर ही तो शास्त्र ने यह कहा है, परमात्मा जब ये चाहता है कि इसका उद्धार करना है, इसका कल्याण करना है, तो उससे शुभ कर्म करवाता है। परमात्मा ये चाहता है कि इसका उद्धार न हो, कि अपने कर्म फल भोगने में जाए और अनुसही होकर, तो फिर उससे अशुभ कर्म करवाता है। तो शुभ कर्म करवाना और अशुभ कर्म करवाने में परमात्मा का कोई पक्षपात तो नहीं है। परमात्मा इस बात को पहले विचार करता है कि इसका हृदय किस प्रकार का है, इसकी हृदय की वासना किस प्रकार की है। उसकी हृदय की वासना स्वच्छ निर्मल है तो उससे शुभ कर्म करवाएगा, और उसके हृदय की वासना मलिन है, दूषित है, तो उससे उसके वासना के अनुसार, हृदय की योग्यता के अनुसार ही उसको कहेंगे तू यही कर्म करने लायक है, यही कर्म कर। उसमें दया करने की क्या बात है, उसमें पक्षपात करने की क्या बात है। जब ये मंत्र हम कहते हैं तो कहते हैं परमात्मा भी पक्षपात करता है, जिसका उद्धार करना चाहता है उसे शुभ कर्म करवाता है, जिसको उद्धार करना नहीं चाहता है उसे अशुभ कर्म करवाता है। इसका मतलब परमात्मा भी पक्षपाती है। इस अर्थ में पक्षपाती नहीं है, क्योंकि शुद्ध अंतकरण वालों के लिए उसी प्रकार का कर्म करवाता है, अशुद्ध अंतकरण वालों के लिए उसी प्रकार का कर्म करवाता है। तो ईश्वर प्रेरित ही सभी कर्म करते हैं, इसमें ईश्वर की प्रेरणा में अपनी योग्यता निर्भर है। तो बता रहे थे भागवत का प्रसंग, क्योंकि बलि शुद्ध अंतकरण वाला था इसीलिए परमात्मा ने विचार किया कि उसका उद्धार करना है, उसके द्वारा शुभ कर्म करवाओ और उसका सब कुछ उद्धार हो जाएगा। तो भगवान बावन के रूप धारण करके चले गए बलि के पास और तीन पग जमीन मांगी, मैं ब्राह्मण बालक हूं, मैं चाहता हूं कि अपनी ही जमीन में बैठकर गायत्री पुरस्चरण करूं, क्योंकि दूसरे के जमीन में बैठूंगा, दूसरे के घर में बैठकर पुरस्चरण करूंगा तो वो आधा पुण्य तो वो ले जाएगा जिसकी जमीन है, जिसका घर है, तो अपने में ही करेंगे तो पूरा फल मिलेगा, तो मुझे अपनी जमीन चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, खरीद के तो जमीन में प्राप्त कर नहीं सकता हूं। तुम राजा हो, मैं ब्राह्मण हूं, और मेरे पास जमीन नहीं है तो जमीन मांगने का हक जरूर है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, और मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए मुझे थोड़ी जमीन से काम चल जाएगा। आसन रखने भर के लिए जमीन चाहिए, कमंडलो और दंड रखने भर के लिए जमीन चाहिए, कोई ज्यादा नहीं चाहिए। तुम यज्ञ में दीक्षित हो, यज्ञ का अर्थ होता है दान करना, और मैं ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आ चुका हूं, इसलिए मुझे कुछ न कुछ दो ताकि तुम्हारा यज्ञ सफल हो। बलि ने कहा कि ठीक है, तुम मांग लो, क्या मांगते हो। बोले जमीन चाहिए। कितनी चाहिए? ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा लेकर कौन उसको खेती करने जाएगा। तीन पग जमीन दे दो, अपने गायत्री पुरस्चरण आराम से कर लेंगे। बलि तैयारी करने लग गया, तीन पग जमीन कौन सी बड़ी चीज है भाई। शुक्राचार्य बैठे हैं तो उन्होंने तो देखा ये है छोटा, अंदर खोटा है, बाहर से छोटा है, अंदर से बड़ा खोटा है, ये और कोई नहीं है, हम लोगों असुर जाति सभी का ये जन्मजात दुश्मन है, खाली देवताओं के हित का काम करता रहता है, यह है खोटा। अरे बलि सावधान, तूने कह तो दिया कि तीन पग जमीन तुम मैं दे देता हूं, तुम नाप लो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये बड़ा खोटा है, इसकी प्रतिज्ञा मत करो। लेकिन बलि शास्त्र को जानता था, इसीलिए कि यज्ञ में दीक्षित हो जाने के बाद कोई याचना करने आवे, वो भी तीन पग जमीन कोई पूरी राज्य तो नहीं मांग रहा है, और वो भी न दूं, आप भी कैसी बात करते हो। बोले ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ा कर देगा ये। बोले जो हो, ब्राह्मण है, साधारण हो चाहे असाधारण हो, इससे मेरा क्या अहित होने वाला है। तैयारी करने लग गए तो शुक्राचार्य जी आप लोगों ने पढ़ाई है, सुनाई है भागवत में। गुरु बार बार कह रहा है कि यह कर्म तू न कर। कौन सा कर्म? इसको दान देने का कर्म तू न कर। मैं तेरा गुरु हूं, मैं इस रहस्य को सब जानता हूं, इसके कपट को मैं जानता हूं। ये तुम्हारे से सब कुछ छीनकर देवताओं का हित करने के लिए आया हुआ है, कपटी है। वही विष्णु है। तो बलि ये सोचने लगा कि यदि वह वास्तव में विष्णु है तो फिर मुझे तो उसी के लिए ही कर्म करना चाहिए, शास्त्र तो यही कह रहा है। तुम यदि वास्तव में विष्णु है कहते हो और ये वास्तव में विष्णु है तो भी मुझे ये कर्म पहले ही करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि तत्कर्म कृत्वा विनिवर्तयति। कल के मंत्रों में व्याख्या हो चुकी है, परमात्मा के लिए कर्म करो और किए हुए कर्म उस परमात्मा को समर्पण कर दो, तब फिर उसके लिए यह दान देना मेरे लिए हित का ही कारण है। और दूसरी बात, यदि कोई साधारण ब्राह्मण होगा तो उसके लिए भी मुझे करना ही है, क्योंकि साधारण ब्राह्मण मेरा क्या अनिष्ट करेगा। वो तीन पग ही तो जमीन मांग रहा है। तो गुरु के कहने पर भी शास्त्र विरुद्ध होने के कारण बलि ने उसका तिरस्कार कर दिया, गुरु के वाक्य का, और शास्त्र सम्मत होने के कारण उस कर्म को स्वयं किया। बात समझ गए ना? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। गुरु कहते रह गए, अरे संकल्प मत कर मत कर, निषेध करते रहे गुरु। गुरु के दृष्टि से वह निषिद्ध कर्म था, लेकिन उस शिष्य बलि शास्त्र को जानने वाला था, परमात्मा के लिए कर्म करना जो करोगे वह विहित ही होगा। तब संकल्प करने लग गए, फिर भी रोकने की कोशिश की तो भगवान ने आग फोड़ दी। ये आगे की कहानी तो आपको पता ही है। संकल्प जहां पूरा हुआ तो परमात्मा ने अपना त्रिविक्रम रूप दिखा दिया, और तीन पग से, दो पग से, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ नाप लिया। बोले बलि अब तीसरा पग कहां रखूं? बोलता ही तूने संकल्प किया है, अब इसको कहां रखूं? ये तो दो ही पद हो गया तेरा सब साम्राज्य। तो बलि बड़ा समझदार था, भगवान का भक्त था। बोले दिया हुआ वस्तु देने वाले वस्तु से अलग होता है। मैंने तो साम्राज्य दिया, भू दिया, तीनों लोक मेरे अधीन में था, वो दे दिया, अभी तो मैं बचा हूं, और तीसरा पद रखना ही है तो रख लो मेरे सिर पर, और क्या। परमात्मा ने रख ली, उससे बलि का क्या नुकसान हुआ, जिससे शुक्राचार्य बार बार विरोध करते रहे कि यह कर्म से तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और गुरु के नुकसान होने वाला कर्म है करके निषेध करते हुए भी बलि ने शास्त्र सम्मत कर्म है ये मानकर निश्चय करके वो कर्म किया, तो शास्त्र के दृष्टि से या बलि का अध्यात्म दृष्टि से बलि का क्या नुकसान हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि गुरु जो कह रहे हैं वो कर देना चाहिए, आंख बंद करके, इतना भी नहीं है, तुम्हें भी खुद विचार करना चाहिए कि किसमें हित है। यदि बलि उस समय मुकर जाता तो बलि का अहित ही होता, बलि अमर न हो पाता, अहित होता, नुकसान होता। लेकिन कर गया, सर्वात्म निवेदन कर दिया, बलि का उद्धार हो गया। आरंभ कर्माणि, इसी प्रकार से आगे कल कहते हैं, भरत अपनी मां के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। शास्त्र एक तरफ ये कह रहा है कि मां के आज्ञा को उल्लंघन नहीं करनी चाहिए पुत्र के द्वारा, पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए पुत्र के द्वारा, मां के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राम 14 वर्ष जंगल जाते हैं, तो मां के आज्ञा का तिरस्कार करके भरत गद्दी में नहीं बैठते। तो मां पिता सरा ही है, पिता की आज्ञा पालन करके राम का श्रेय होता है, तो भरत का भी तो श्रेय होना चाहिए था। लेकिन मां बार बार भरत को राम की इच्छा के विपरीत, राम के निमित्त से विपरीत कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है। राम को स्वतः प्राप्त हुआ हुआ अधिकार को राम से छीनकर भरत को देना चाह रही है। तो राम के विपरीत कर्म हुआ उसकी मां के द्वारा, तो भरत समझदार थे, शास्त्र सम्मत नहीं है, मां का ये कथन शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए मुझे ये करना बाध्य नहीं, उल्लंघन हो गया, प्रत्यवाय नहीं लगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। विभीषण ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, रावण बड़ा भाई है, विभीषण छोटे भाई है, छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई का आज्ञा पालन करे, लेकिन राम से विमुख होने के कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा था, इसलिए उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। शास्त्र सम्मत बड़ा भाई भी शास्त्र सम्मत कर्म करने को कहे तो उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, यदि शास्त्र विपरीत कर्म करने के लिए कहता है तो उल्लंघन करने में प्रतिवाय नहीं है। इसलिए कहा कि आरंभ कर्माणि, पहले तो कर्म का आरंभ करना ही पड़ेगा। गीता में भी ये बात बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्म सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता है, कर्म छोड़कर निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, कर्म करके ही निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यदि कर्म किए बिना निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होती तो हर व्यक्ति गहरी निद्रा में जाता है, तो उसी गहरी निद्रा के सुसुप्ति के परिणाम से उसको निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि सुसुप्ति में वह सर्वथा कर्म छोड़ता है। तो क्या सुसुप्ति की उपलब्धि से निष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो सकती है किसी को? तो कर्म करके ही निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होगी। आरंभ कर्माणि गुणान्वितानि, इसीलिए कहा कि कौन से कर्माणि आरंभ, गुणान्वितानि कर्माणि आरंभ, गुण से युक्त हुए हुए कर्मों का तुम आरंभ करो, और वही कर्म गुण से युक्त हैं जो शास्त्र सम्मत हैं, और वही कर्म दोष से युक्त हैं जो शास्त्र निषिद्ध है। कर्म तो कर्म है, कौन सा कर्म शास्त्र सम्मत है और कौन सा कर्म शास्त्र निषिद्ध है। प्रातःकालीन ब्रह्मसूत्र के कल के स्वाध्याय में यही तो चर्चा हो रही थी कि कौन कर्म धर्म मूलक है, कौन अधर्म मूलक है, ये बात हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, ये बात तो शास्त्र ही निर्णय करेंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म अतीन्द्रिय है। धर्म अधर्म स्वयं अतीन्द्रिय होने के कारण हम अपने इंद्रियों के द्वारा ये कर्म धर्म मूलक है, ये कर्म अधर्म मूलक है, ये निर्धारण नहीं कर सकते। धर्म अधर्म बुद्ध्यातीत हैं, सूक्ष्म हैं, इसलिए ये धर्म है अधर्म है हम निर्णय नहीं कर सकते। कौन करेगा? बोले अपौरुषीय वेद ही उस सूक्ष्म धर्म और अधर्म को जानते हैं, इसलिए वो जो कहते हैं वही धर्म होगा, वही अधर्म होगा। विचार चल रहा था कल के स्वाध्याय में, ब्रह्मसूत्र के स्वाध्याय में, पूर्व पक्ष ने उठाया कर्म। ये ज्योतिषोम यज्ञ है, अग्निशोमीय यज्ञ है, ये तो पापमय यज्ञ है, क्योंकि इसमें पशु का प्रयोग होता है, पशु हिंसा बलि का प्रयोग किया जाता है। बोले कि तुम्हारे आपात दृष्टि से देखने पर अग्निशोमीय यज्ञ और ज्योतिषोम आदि यज्ञ ये बलि प्रयोग होने के कारण ये निषिद्ध है, तुम कह रहे हो